लड़कों के दो मीठे शब्द और थोड़े से फ्लर्ट को मोहब्बत समझ बैठती हैं और फिर सीधे शादी के सपने देखने लगती हैं। सादिया चुपचाप उसे देखती रही। रिहान के शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें बेचैनी भी थी और एक अजीब सी चिंता भी। लेकिन सादिया ने उस चिंता का मतलब बिल्कुल अलग समझा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, रिहान आज उसके लिए इतना गुस्सा हुआ है मतलब वो सच में उसकी परवाह करता है। उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रिहान के मन में जो तूफान चल रहा है उसकी वजह कुछ और ही है। सादिया ने धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में कहा, वो और लड़कियां होती हैं रिहान, हमारी नूर ऐसी नहीं है। उसके पास तो पहले से ही शादी का ऑप्शन है, इसीलिए नूर किसी के बहकावे में आने वाली लड़की नहीं है। जब भी उसे निकाह करना होगा वो साकेत के साथ ही करेगी। रिहान जो अब तक खामोश खड़ा था अचानक उसकी बात काटते हुए बोला, वो उसका मंगेतर नहीं है, साकेत से उसका कोई रिश्ता नहीं है। सादिया की भौहें हल्की सी उठ गईं। उसने जैसे रिहान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, लेकिन आपसे ये किसने कह गया कि उसका कोई मंगेतर नहीं है? रिहान एक पल को चुप रह गया। रिहान इकबाल से बात कर चुका था, उसी ने बताया था कि नूर का कोई मंगेतर नहीं है, मगर वो ये बात सादिया को नहीं बता सकता था। फिर उसने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, मुझे अंदाज़ा है नूर इन चक्करों में पड़ने वाली लड़की नहीं है। सादिया ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर आपको इतना डर क्यों लग रहा है? रिहान का चेहरा थोड़ा तना हुआ था। उसने गहरी सांस ली और बोला, हमें नूर पर कुछ पाबंदियां लगानी होंगी वरना अरमान उसका फ़ायदा उठा सकता है, नूर मेरी जिम्मेदारी है। सादिया हल्का सा हंसी लेकिन उसकी हंसी में तन साफ छलक रहा था। फ़ायदा? उसने दोहराया, कोई एक नहीं, दोनों ही एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। सच्चाई यही है, आप सिर्फ अरमान पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। रिहान की आंखों में गुस्सा चमक उठा। हद में रहो सादिया, उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त हो गई थी। वो ये सुनना ही नहीं चाहता था कि नूर किसी से जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन सादिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने पूरी शांति से कहा, मैं अपनी हद में ही हूँ और वो दोनों भी अपनी हद में हैं, आप समझते क्यों नहीं? रिहान ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो अंदर ही अंदर चल रहा था। सादिया आगे बोली, बस आप ही हैं जो बिना वजह नूर पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं। आप उसे उन सुविधाओं से दूर कर रहे हैं जो उसे मिल रही हैं। रिहान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ऐसी कौन सी सुविधा है जो अरमान उसे दे रहा है? सादिया जैसे इसी सवाल का इंतज़ार कर रही थी। उसने तुरंत कहा, आपने देखा नहीं, वो अरमान के साथ उसकी बड़ी गाड़ी में आती जाती है और आप उसे ड्राइवर के साथ छोटी गाड़ी में भेजने को कह रहे हैं। कभी उसका एसी खराब हो जाता है, कभी ड्राइवर फैज़ान या करीम के साथ जाना उसे पसंद नहीं आता। वो छोटी गाड़ी तो घर के सामान के लिए होती है। रिहान उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसे याद आया कि सच में उसने नूर के लिए कई बार वही छोटी गाड़ी भेजी थी। उस वक्त उसे ये बात इतनी बड़ी नहीं लगी थी लेकिन अब सादिया की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, नूर ऐसी नहीं है, उसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सादिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानती थी कि उसकी बातें रिहान के दिमाग में शक का बीज बो चुकी हैं। वो धीमे से बोली, फ़र्क तो हर किसी को पड़ता है रिहान, बस कुछ लोग कह नहीं पाते। रिहान अब और कुछ सुनना नहीं चाहता था। उसने गुस्से में एक नज़र सादिया पर डाली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सादिया वहीं खड़ी रह गई, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। रिहान के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और सादिया के दिमाग में नए नए प्लान बन रहे थे। उसे अच्छी तरह पता था, अब बस थोड़ा सा शक, थोड़ा सा खेल और नूर इस घर से बाहर होगी। माहिरा ने अब अपना फैसला पक्का कर लिया था। हवेली को गेस्ट हाउस में बदलने का ख्याल अब सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा था बल्कि एक प्लान बन चुका था। इस बारे में वो अपने डैड से भी बात कर चुकी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो करो, मुझे तुम पर भरोसा है। डैड की मंजूरी मिलते ही माहिरा और भी आत्मविश्वास से भर गई थी। उसे लगा था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर किसी को ये फैसला पसंद नहीं आया था। सबसे ज्यादा परेशानी जुबेदा बेगम को हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि माहिरा जो कर रही है वो सिर्फ एक जिद है और इस जिद में वो बहुत बड़ा नुकसान कर देगी, इतने पैसे यूं ही बर्बाद कर देगी। जुबेदा बेगम मन ही मन बड़बड़ाती रहती थी। उधर आज सुबह ही माहिरा हवेली चली गई थी। उसने आर्किटेक्ट और कुछ काम करने वाले लोगों को बुला रखा था ताकि पूरे घर का अंदाज़ा लगाया जा सके, कहाँ क्या टूटेगा, क्या बदलेगा, कितना खर्च आएगा। पुरानी हवेली के बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची छतें, लंबे बरामदे, सब कुछ अब नए रूप में ढलने वाला था। माहिरा हर कोने को ध्यान से देख रही थी। कभी वो दीवारों को देखती, कभी खिड़कियों को, कभी आंगन को। उसके दिमाग में गेस्ट हाउस की पूरी तस्वीर बन चुकी थी, कमरे, लॉन, एक छोटा सा कैफे और ऊपर की मंजिल पर बैठने की जगह। लेकिन दूसरी तरफ जुबेदा बेगम का दिल घबराया हुआ था। आखिरकार वो खुद रिहाना बेगम के घर चली आईं। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर कोई माहिरा को रोक सकता है तो वो रिहाना बेगम ही है। जब वो घर पहुंची तो हाल में पहले से ही नूर और सादिया बैठी हुई थीं। तीनों आपस में बातें कर रही थीं। जुबेदा बेगम आते ही सोफे पर बैठ गईं और थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, देखो भाभी, माहिरा किसी की भी नहीं सुन रही। वो हवेली को गेस्ट हाउस में बदल रही है। उसके डैड ने भी उसे इतने पैसे दे दिए हैं, सब बर्बाद कर देगी वो। आप ही उसे रोक लो। उनकी आवाज में साफ चिंता झलक रही थी। रिहाना बेगम ने बहुत शांति से उनकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जुबेदा बेगम ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, आपको ये ठीक लग रहा है? रिहाना बेगम ने सिर हिलाया, उसे काम करने दो, पढ़ी लिखी लड़की है, कुछ सोच कर ही कर रही होगी, शायद वो सच में गेस्ट हाउस चला ले। जुबेदा बेगम को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उधर नूर चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। सादिया की नज़र कभी नूर पर जाती, कभी जुबेदा बेगम पर। उसे महसूस हो रहा था कि घर के हर कोने में इन दिनों कोई ना कोई हलचल चल रही है। लेकिन उसी वक्त घर के बाहर लॉन में एक और कहानी चल रही थी। फैजान घास पर बैठा हुआ था, उसके सामने कागज और मोबाइल पड़ा हुआ था। वो चुपचाप कुछ सोच रहा था, जैसे दिमाग में अलग अलग बातों को जोड़ रहा हो। सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा था, आज नूर बीवी को लेकर तुम ही जाओगे, लेकिन बाद में रेहान ने खुद अरमान को फोन करवाकर झूठ बुलवा दिया कि घर में कोई नहीं है। फिर जो हुआ वो फैजान के दिमाग में बार बार घूम रहा था। नूर अरमान के साथ वापस आई थी, लेकिन जब वो कार से उतरी थी तो उसके पैरों में समंदर की रेत लगी हुई थी। इसका मतलब साफ था, वो सीधे घर नहीं आई थी, वो कहीं और गई थी अरमान के साथ। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कल रात फैजान ने खुद अपनी आंखों से देखा था। छत पर अरमान और नूर साथ बैठे हुए थे। रात काफी हो चुकी थी लेकिन दोनों अभी भी बातें कर रहे थे। उस वक्त फैजान चुपचाप वापस नीचे आ गया था। अब वो लॉन में बैठा हुआ था और अपने दिमाग में सारी बातें जोड़ रहा था। अगर नूर और अरमान सिर्फ दोस्त होते, वो सोच रहा था, तो इतना छुपाने की क्या जरूरत थी। उसे ये भी पता था कि रेहान इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है, लेकिन सवाल ये था, क्या उसे असलियत का अंदाजा है? फैजान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे लगने लगा था कि अरमान और नूर का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक नहीं रहा, और अगर ये बात सच निकली तो इस घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था।
रिपीट करती हूँ, मेरी ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।